ونص اللي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق نمبر 7 آيت نمبر 47 سے 49 سورة البقرة لسن نمبر 7 آيت نمبر 47-59 سورة البقرة لفظي ترجمة دہرائیں گے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل
يا بني
اے اولاد یعقوب اذکرو یاد کرو نعمتی اللتی میری وہ نعمت جو انعمتو میں نے عطا کی علیکم تم کو وانی اور بے شک میں نے فضلتکم بڑائی دی تم کو علی العالمین تمام جہانوں پر واتقوا اور ڈرو یومن اس دن سے لا تجزی کہ نہ کام آئے گا نفسن کوئی نفس ان نفسن کسی نفس کے شیئن کچھ بھی ولا اور نہ یقبلو قبول کی جائے گی منہا اس سے شفاعتن کوئی سفارش ولا یؤخذو اور نہ لیا جائے گا منہا اس سے عدلن کوئی بدلہ ولا ہم اور نہ وہ ینصرون مدد دیے جائیں گے وَإِذْنَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آل فرعون آل فرعون سے یسومونکم وہ مبتلا رکھتے تھے تم کو سوء العذاب برے عذاب میں یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ویستحیون اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم تمہاری عورتوں کو وفی ذالکم اور اس میں بلاءم آزمائش تھی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بہت بڑی وَإِذْ فَرَقْنَا اور جب ہم نے پھاڑا بِكُمُ الْبَحْرَ تمہارے لیے سمندر کو فَأَنْجَيْنَاكُمْ پس ہم نے نجات دی تم کو وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے ڈبو دیا آل فرعون آل فرعون کو وَأَنْتُمْ اور تم تنظرون دیکھ رہے تھے وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اربعین لیلتن چالیس راتوں کا ثم اتخذتم العجل پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے وانتم ظالمون اور تم ظالم تھے ثم عفونا پھر ہم نے معاف کیا انکم تم کو من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر گزار بنو و اور اس جب آتینا
دی ہم نے
موصل کتابہ
موسیٰ علیہ السلام کو کتاب
والفرقانہ
اور فرق پیدا کرنے والی
لعلکم تاکہ تم تہتدون
سیدھی راہ پالو
وَإِذْ قَالَ
اور جب کہا
موسیٰ نے
لِقَوْمِهِ
اپنی قوم سے
یا قومی
اے میری قوم
انکم
بے شک تم نے
ظلم کیا
انفسکم
اپنے نفسوں پر
بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ
بچھڑے کو بنانے کے سبب
فتوبو
پس توبہ کرو
الی بارئیکم
طرف اپنے پیدا کرنے کے
فاقتلو
پس قتل کرو
انفسکم
اپنے نفسوں کو
ذالکم خیر لکم
یہی بہتر ہے تمہارے لیے
اندباریکم
تمہارے خالق کے نزدیک
فتاب علیکم
پس توبہ قبول کی تمہاری
انہو
بے شک وہ
ہوا التواب الرحیم
وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے
وَإِذْ قُلْتُمْ
اور جب کہا تم نے
یا موسیٰ
اے موسیٰ
لن نؤمن لکا
ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تم پر
حتی
یہاں تک کہ
نراللہ
ہم دیکھ لیں اللہ کو
جہرتن
اعلانیہ
فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ
پس آ لیا تم کو بجلی کی کڑک نے وَأَنْتُمْ
اور تم
تَنْظُرُونَ
دیکھتے تھے
ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ
پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں
مِمْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ
تمہاری موت کے بعد
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
شاید کہ تم شکر کرو
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ
اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا
وَأَنزَلْنَا
اور اتارا ہم نے
عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى
تم پر من اور سلوہ
کلو
کھاؤ
من طیباتی
پاکیزہ میں سے
ما رزقناکم
جو دی ہم نے تم کو
وما ظلمونا
اور نہیں نقصان کیا انہوں نے ہمارا
یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ بہت سارے لوگ غلط فہمی سے ترجمہ بدل غلط کر پڑھ دیتے ہیں. اب میں دوبارہ شعور کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرنے کے بعد پڑھاتی ہوں, تو دیکھیے گا کہ اس کے دو مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں. بظاہر جو لگتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ دوسرا ہے. پہلے اس کا ٹھیک ترجمہ پڑھتے ہیں.
وَمَا ظَلَمُونَا
اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. بہت سارے لوگ پیچھے سے ٹیکسٹ کو ملاتے ہوئے یہ پڑھ دیتے ہیں اور نہیں ظلم کیا ہم نے ان پر. اب آپ کو گرامر تو ابھی نہیں آتی نا, لیکن چونکہ پیچھے چل رہا تھا کہ انہوں نے من سلوا کا انکار کیا پھر اللہ نے چھین لیا, تو ہم اس کے آگے یہی کہیں گے ہاں جی اللہ نے من سلوا کو روک کر ان پر ظلم نہیں کیا. حالانکہ لفظ کیا ہے, ظلمو پلس نا ظلمو. ڈکشنری کی گرامر کی روشنی میں دیکھیں تو ظلمو ان سب نے ظلم کیا نہ ہم پر. تو اگر اس کا یہ ترجمہ ہم پڑھیں گے نا کہ ہم نے ان پر ظلم کیا, تو لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ بما ظلمنا. صرف ایک آپ کی حد سے بڑی بھی بات ہے, لیکن بس اس کو رٹ لیجئے گا. انہوں نے انکار کر کے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا, اپنا ہی نقصان کیا, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری من سلوا کا انکار کر کے. چلے اب پیچھے سے پھر پڑھتے ہیں. کلو کھاؤ من طیباتی, پاکیزہ چیزوں میں سے, ما رزقناکم, جو دی ہم نے تم کو, وما ظلمونا, اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر, ولیکن کانو, اور لیکن وہ تھے, انفسہم, اپنے نفسوں پر, یظلمون, ظلم کرتے. وَإِذْ قُلْنَا, اور جب ہم نے کہا, اُدْخُلُوا, داخل ہو جاؤ, هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اس بستی میں, فَكُلُوا, بس کھاؤ, مِنْهَا, اس میں سے, حَيْثُ شِئْتُمْ, جہاں سے چاہو تم, رغدن, بافراغت, یعنی مزے سے, وَادْخُلُوا الْبَابَ, اور داخل ہو جاؤ دروازے میں, سجدن, سجدہ کرتے ہوئے, وَقُولُوا, اور کہتے جانا, حِتَّتُن, بخش دے, نغفر لکم, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے, خطایاکم, تمہاری خطائیں, وسنزید المحسنین, اور ان قریب زیادہ دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو, فبدل الذین, پھر بدل دیا ان لوگوں نے, ظلمو, جنہوں نے ظلم کیا تھا, قولن, بات, غیر الذی, سوائے اس کے جو, قیل لہم, کہی گئی تھی ان سے, فانزلنا, پس نازل کیا ہم نے, علی الذین ظلموا, ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا, رجزم, سخت عذاب, من السماء, آسمان سے, بما کانو, اس لیے کہ تھے وہ, بما کانو, اس لیے کہ تھے وہ, یفسقون, نافرمانی کرتے. بس جی, تھوڑا سا لمبا لگا ہوگا آج کا, لیکن ساری کہانی ہے, تو ترجمہ جب بھی کبھی لمبا ہو تو سمجھ لیں کہ سبق بہت آسان ہوگا. اب اس میں دیکھیں, آپ کو اردو کے الفاظ کی میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ پہچان ہو گئی ہے نا. تھوڑے سے دو چار لفظ دیکھتے ہیں جو پیچھے بھی نہیں آئے اور ہماری زبان میں بھی نہیں ہے. آیت نمبر 47 سے پہلی آیت تو بالکل وہی ہے جو ہم پیچھے بھی کر چکے پچھلے سبق کے ساتھ. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں لفظ دیکھیے گا, ہمارے پاس ایک آ رہا ہے لا تجزی. اردو میں جزا کا لفظ سنتے ہیں نا, جزا سزا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ, روز جزا, جزیہ کا لفظ سنتے ہیں, وہ بھی اسی سے, غیر مسلموں سے مسلمان حکومت جو منی لیتی ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیے لفظ شفاعت, ان کا بہت معروف لفظ ہے نا, آج اس کی اصل دیکھیں گے ہم. لفظ شفاعت کیا ہے؟ سفارش کہتے ہیں نا سفارش کو, یا شفاعت کا حق. اس کا روٹ ہوتا ہے شین فا عین, شفا. قرآن پاک میں سورۃ فجر کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, شف کی قسم اور وتر کی قسم. تو شف ایسے ہی ہے جیسے, لیجیے میں آپ کو اس سے سمجھاتی ہوں. یہ دیکھیے کہ یہ مارکر ہے نا میرے سامنے, ہائی لائٹر ہے. اب یہ ہے مارکر, یہ ہے اس کا ڈھکن. اگر مجھے کہیں پڑا ہوا یہ ڈھکن ملے, میرے کسی کام کا نہیں, کام کا نا. اسی طرح اگر ڈھکن کھو جائے تو یہ خالی مارکر کہیں پڑا رہے تو کچھ دن کے بعد کیا ہوگا, सूख जाएगा ना, ये अकेला कुछ नहीं कर पा रहा, ये अकेला कुछ नहीं कर पा रहा। जब इन दोनों को जोड़ के इस तरह बंद करके रख दिया तो क्या हुआ कि एक कारामत चीज़ बन गई। तो शफ या शिफात के लफ्ज़ में क्या मीनिंग्स हैं इसको भी कुछ समझना हो तो सॉक्स को समझ लें। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, एक जो सॉक मिल रही है दूसरी नहीं मिल रही, फिर एक नीली पहननी पड़ेगी एक सब्ज़ पहननी पड़ेगी। तो शफ कहते हैं स्पाउस का एक हिस्सा, जैसे हस्बैंड और वाइफ है ना, तो सिर्फ हस्बैंड है या सिर्फ वाइफ है। कोई भी चीज़ जो दो के मिलने से पूरी होती है उसका एक चीज़। लफ्ज़ सिफारिश में भी यही मफहूम है। एक बंदा अकेला खड़ा था, अपना काम खुद नहीं कर पा रहा, आपसे उसने कहा आइए ज़रा मेरी सिफारिश कर दे, आप गए, आपके कहने से उसका काम हो गया, तो गोया के वो अकेला और आप अकेला दो मिले तो काम हो गया। बात वाज़े, यानी शफ के अंदर अधूरी चीज़ का मफहूम पाया जाता है। तो सिफारिश में भी यही लफ्ज़ क्यों आता है कि जो काम एक बंदा ख़ुद नहीं कर पाता दूसरे के कहने से वो काम उसका हो जाता है। आगे लफ्ज़ देखिए अदलुन, अदल का लफ्ज़ उर्दू में बोलते हैं ना, वो तो होता है अदल और इंसाफ, लेकिन यहाँ अदल जो है ना ये बदले के मानों में, रैंसम बदला क्या है, जैसे उर्दू में एक लफ्ज़ बोलते हैं अदले का बदला, हालांकि वो अलिफ से होता है अदले का बदला, लेकिन अदल क्या है कंपनसेशन में, मेरी बदले में कोई और ये काम कर दे, गुनाह करे बाप और उसकी सज़ा में बेटे को पकड़ लिया जाए। फिर युनसरून का लफ्ज़ बहुत आसान है, नजई नाकुम का लफ्ज़ उर्दू में कभी बोला जी बोलिए, निजात सबीलुन निजात है, और कोई लफ्ज़ नाजी निजात पाने वाला, तो नून जीम वाव इसका रूट होता है, नजाओ से निजात पाना, किसी चीज़ से अपने आप को बचा लेना। फिर लफ्ज़ देखिएगा आल फिरौन, लफ्ज़ फिरौन लफ्ज़ आल का लफ्ज़ तो वही है जो उर्दू में बोलते हैं बिमा अहलो अयाल, एक लफ्ज़ होता है अहल अलिफ खालम, जैसे अहलो अयाल अहलिया अहले खाना, फलां इस बात का बहुत अहल है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है आल, फ़र्क क्या है दोनों में, अहल जो है वो सिर्फ फैमिली तक रहता है बीवी बच्चे शोहर, और आल क्या है वाइड, जैसे आल इब्राहिम अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम, तो वहाँ ये नहीं कहा कि व अला अहली इब्राहिम, अहल छोटा है। आपको कोई कहे कि आप भी महलो या लाएँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के जो भी लोग हैं बाप है भाई जो भी दो चार लोग हैं ले जाएँ, और अगर आपको कोई कह दे कि बीमा आल औलाद आइए तो क्या करेंगे, आप ले जाएँ पूरे ख़ानदान को वो हो देगा, ठीक है। तो आल बड़े लोगों की होती, चाहे फिरौन किस नाम से भी मारूफ है लेकिन मारूफ तो था ना, तो आल का लफ्ज़ फेमस लोगों के लिए आता है क्योंकि उनके साथ बड़े बड़े गिरोह होते हैं, उनकी फैमिली बहुत छोटी नहीं रहती, फिर उनकी फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि अल्लाह की मखलूक उनका कुंबा बन जाती है। लफ्ज़ फिरौन बड़ा दिलचस्प है, पहले तो आप देखिए कि इसके अंदर रूट क्या होगा, कोई गेस करे, फिरौन जी बताइए, आइन व नून ऑन, ऑन तो मददगार है, आपने वो सोच लिया नस्तईन, अच्छी सोच है आपकी, गुड, मुझे खुशी हुई, लेकिन ये है नहीं जी, और आप कीजिए कोशिश, परेशान ना हो प्लीज़, चेहरे अच्छे रखें हैं। चलिए ये आपका आज का वो चेक करने का, अब ये नहीं कि आप इस पे परेशान हो जाएं, लेकिन लफ्ज़ फिरौन जो है ना ये रा से बना है, अब तो समझ आ जाएगा, रा रा आइन वाओ या होता है। ये जो इंग्लिश में लफ्ज़ सुना है रे, सन रेज, रे का लफ्ज़ सुना है, असल में जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ना रेज सूरज की शुआएं, वही लफ्ज़ है ये रा, ये जो लफ्ज़ था ना ये शुआ के लिए आता है। फिरौन ना तो कोई एक इंसान था, ना औरत थी ना मर्द था, फिरौन एक टाइटल है, जैसे आज आप कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर ख़ारजा, हर मुल्क का हर दौर का मुख्तलिफ होता है, तो फिरौन एक टाइटल था और मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ फिरौन गुजरे, ठीक है। तो फिरौन लफ्ज़ के अंदर जो उनका अकीदा है ना वो क्या था कि सूरज देवता का अवतार, मिस्री लोग जो थे ना ये सूरज की पूजा करते थे, अब आप इमेजिनेशन में लाएं कि सूरज की को वर्शिप करें तो उल्टा होके तो सजदा नहीं करेगा ना, सूरज को कैसे पूजे। फिर उन्होंने उसे एक अकीदा घड़ा कि सूरज ने अपना एक बहरूप एक इंसान की सूरत में दुनिया में भेज दिया। आपने कभी हिंदू कल्चर में लफ्ज़ अवतार सुना होगा, ईश्वर का अवतार या अवतार का ईश्वर, कुछ इस तरह अवतार कहते हैं कि खुदा ऊपर है लेकिन उसने दुनिया में या अपने अपने कासिद भेजे में। तो फिरौन अपनी पूजा क्यों करवाता था लोगों से कि मैं सूरज देवता का नुमाइंदा हूँ, ठीक है, उसी से लफ्ज़ फिरौन और इसी की जमा फ़राइना पड़ती है, तो रे और रा उसी के अंदर लफ्ज़ आ गए। यसू मूना कुम का लफ्ज़ भी बड़ा दिलचस्प है, सीन वाव मीम इसका रूट होता है सोम सामा यसूम, उससे ये लफ्ज़ आता है, इसके अंदर चराने का मानी है। आगे हम पढ़ेंगे सूरत नहल में आता है तो सी मूना, जानवरों को जब जंगलों में चराने के लिए लेके जाते हैं लोग तो वहाँ वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो लफ्ज़ तो सी मून से यूसी मून, और यूसी मून से मुराद यह है कि मुश्किल में डालना, आसान नहीं होता। साम यूसीम से ये लफ्ज़ है, मतलब यह है कि तुम्हें वो इस ज़रिए से बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देता था। ठीक है, ना समझ आए तो घबराइए नहीं, हम में से कोई सिर्फ इस कोर्स को रूट वर्ड्स के लिए नहीं कर रहा, इसलिए अगर आपको एक भी रूट वर्ड समझ ना आएगा तो आप फिर भी परेशान बहरहाल नहीं होंगे। फिर उसके बाद देखिए कि अगला कोई मुश्किल लफ्ज़ है, युजब्बे हुन का लफ्ज़ उर्दू में आता है ज़िबा करना, ज़बा अब ना भी आ गया, यस्तहयून का क्या होगा रूट, आप लोग अब बताया करें। हाँ या शाबाश, हयुन से हयात, हयुन अल्लाह ताला का नाम, अल हय भी इसी से आ गया। फिर आगे देखते हैं निसा का लफ्ज़ तो उर्दू में बहुत ही आता है, हुकूक नस्वा, निस्वानियत, अब तो नहीं होती लेकिन कभी होती थी तो लफ्ज़ बोलते थे। और आगे देख लेते हैं फ़ी ज़ालिकुम बलाउन, ये बला का लफ्ज़ भी कभी उर्दू में आया, लेकिन अरबी ज़ुबान में बला का लफ्ज़ हमेशा बुरा नहीं होता, बला बेसिकली कहते हैं आजमाइश को। लफ्ज़ उर्दू में सुनते हैं मुबतला, फला मुबतला कर दिए, वो भी लफ्ज़ बाला हमजा भी होता है, तो बला बेसिकली होती है आजमाइश। अब आजमाइश एक तो है ना वो चुड़ैलों वाली, वो नहीं, औलाद भी इब्तला है, अल्लाह ताला ने और माल को भी आजमाइश का, तो अच्छी आजमाइशें भी होती हैं बुरी भी होती हैं। ठीक है, तो यहाँ वही लफ्ज़ है बला के मानों में, आजमाइश या टेस्ट के मानों में। फिर उसके बाद देखिए फ़रकना, उर्दू में ये लफ्ज़ सुना कभी, फ़राक़ा फ़िरक़े का लफ्ज़ तो सुना ही होगा ना, फ़राक़ा फ़िराक का लफ्ज़ उर्दू में आपने सुना होगा। अब आप देखिए सिर्फ मैं आपको, मैं डराने के लिए नहीं ये लफ्ज़ बोल रही, लेकिन आप देखिए कि लफ्ज़ एक है फ़रकना, हमने फाड़ा, अब इसके ज़रा मुख्तलिफ़ एंगल जो हम पढ़ते हैं कुरान में भी आएंगे आप पढ़ेंगे, जैसे फ़िराक़ुन सुबह फुटने के वक्त को कहते हैं, जैसे फ़लक है ना कुलाउज़ु बिरब्बिल फ़लक, अरबी ज़ुबान में एक लफ्ज़ याद रखें कि जिस लफ्ज़ के शुरू में फ़ा लग जाएगी उसमें ज़रूर कुछ फटेगा, जैसे फ़जर फ़लक फ़खर फटना, यानी फ़ा जिस फ़ेल से पहले लग जाता है उसमें फटने का मानी पाया जाता है। इस तरह फ़िरक़ुन कहते हैं डर की वजह से दिल के परागंदा होने को, दिल में बहुत खौफ आता है। इसी तरह अरबी ज़बान में फ़रूक या फ़रूक़ा कहते हैं डरपोक आदमी को जो दिल में बहुत डरे। फ़ारिक़ुन कहते हैं उस बदली को जो दूसरी बदलियों से अलग हो के एक साइड पर हो जाती है। अब आप देखिए अरबी ज़ुबान का कोई मुकाबला कर सकता है? फिर इसी तरह अरबी ज़ुबान में अलफ़र्क कहते हैं वो मुर्ग जिसकी कलगी कई शाखों में हो, आपने मुर्गी और मुर्गे की जो कलगी उसको देखा होगा ना, मुर्ग की होती है वो बिल्कुल कटी कटी होती है, चोंचे चोंचे, कुछ की बिल्कुल एक ही है, तो जिसकी बहुत चोंचे हैं वो बहुत कीमती मुर्ग होता है, तो उस मुर्ग को अलफ़र्क कहते हैं। इसी तरह अलफ़रीका कहते हैं दूध में पकाई हुई खजूर को अरबी में, अलफ़रूका कहते हैं गुर्दों की चर्बी को, अब कैसे आप परेशान हो गए, इसलिए अब करते ही नहीं कोर्स, ये फ़र्क फरीका फ़र्क ही नहीं आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ़ इससे ये देखा करें कि अल्लाह ताला ने ये कुरान क्यों अरबी में नाजिल किया और कितना इंसान इंजॉय करता है जब इसको समझने लग जाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला लफ्ज़ देखते हैं, बाहर का लफ्ज़ उर्दू में बहुत है, हाँ कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं, खुदा तुझे किसी बहर से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं। अलामा इकबाल ने अपने बेटे को बददुआ दी थी, कहते थे कि तुझे अल्लाह किसी मुश्किल में डाले क्योंकि मुझे तेरे अंदर कोई जोश खोश नहीं दिखता, क्योंकि जब हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं एडवर्स कंडीशंस आते हैं ना तो हमारे सोए हुए सेल्स भी काम करने शुरू हो जाते हैं, तो जब उम्मतों पर भी मुश्किलें आती हैं तो वो भी इंतज़ार करती हैं कोई जलजला आए तो सारे मिल के काम करें, कोई सैलाब आए तो सारे कौम बन के फिरें और आगे पीछे भीड़ बने होते हैं। तो बहरहाल बाहर का लफ्ज़ उर्दू में हम बहुत बोलते हैं। फिर उसके बाद आगे देखते हैं अनजई नाकुम में, तो वही लफ्ज़ है पीछे शायद पढ़ा हमने कि नहीं, निजात। अगरकना का लफ्ज़ है गरका, गरक हो गया फलां उसमें चला गया, वही चीज़ आ गई। फिर उसके बाद देखिए अंतुम तंजरून में क्या लफ्ज़ है, नज़र नाजरीन, कुछ लफ्ज़ जाना पहचाना लगा है, नज़ारा मंजर नज़र। वादना के लफ्ज़ में क्या छुपा हुआ है, वादा, हाँ। अरबाइन में क्या छुपा होगा, अरबा अरबा क्या हुआ, रुब से राबा आइन, रुब कहते हैं चौथे को, फोर्थ, वन फोर्थ, तो अरबाइन 40, क्योंकि ईन जो है ना ये 10 हैं, तो 10 और 4 ज़रब 40। लैला क्या है, कभी ये लफ्ज़ सुना, लैला मजनू, जी ये वही लैला है, काली थी वो इसलिए उसको लैला कहते थे। आप ऐसे रंग गोरा करने की कोशिशों में हैं। चलिए, सुम्मत तखस तुमल इजला, ये इजल क्या लफ्ज़ है, बछड़े को कहते हैं, आइन जीमला, बछड़ा क्या होता है, एक होता है, अच्छा कई लोग इसका तर्जमे में कल देखिएगा बिछड़ा सुनाएंगे, तो ज़रा आप कान खोल के सुने तर्जमे का, ये बिछड़ा नहीं है ये बछड़ा है, बिछड़ा तो वो होता है जो आपसे बिछड़ गया हाँ, और बछड़ा क्या होता है, अच्छा कई लोगों को ये भी नहीं पता कि बछड़ा क्या होता है हाँ, तो घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं, घोड़े के बच्चे को, अब रहने ही दें तो बेहतर है, ज़्यादा ना ही पूछें तो बेहतर है। अच्छा ये जो लफ्ज़ है ना अजल, उजलत भी इसी से है, आजिला, युहिब्बुन अलाजिला, ये गाय के बछड़े को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पैदा होते ही खड़ा होकर चलना चाहता है, जल्दबाज होते हैं ना, खुलिकल इंसान मिन अजल, कुरान पाक में आगे आप पढ़ेंगे, तो उजलत अजल इसी से है। वन तुम ज़ालिमुन सुम्मा आफ़ौना, पीछे गुजरा, माफ़ी, अफ़ो दर गुज़र, जी वही है, लअल्लकुम तशकुरून, ये भी लफ्ज़ गुज़र गया। फिर देखिए लफ्ज़ आ गया फुरकान, कोई आप में से अभी बताएगा लफ्ज़ फुरकान, पहले कहीं पढ़ा हमने इसी रूट से कुछ, जी शाबाश, फ़र्क ना अलैकुम, वही मैं सुनना चाह रही थी जिसके ऊपर इतने लफ्ज़ आपको बताए गए, ये भी वही लफ्ज़ है, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली चीज़, क्राइटीरियन के मानों में, तहतदून में हिदायत छुपी हुई है। फिर आगे चलते जाइए, कोई लफ्ज़ नया आए मैं छोड़ूँ तो आप पूछ भी सकते हैं, इला बार ईकुम, इसको भी शुरू में स्टूडेंट समझ नहीं पाते, जब मैंने पहली दफ़ा याद किया तो मुझे लग रहा था ये लफ्ज़ होना चाहिए फ़तूबू इला रब्बिकुम, लफ्ज़ समझ नहीं आता था बारी ईकुम, लेकिन असल में ये क्या लफ्ज़ है, अल्लाह सुबहान तआला का नाम अल बारी, अल बारी हाँ, उस्माल हुस्ना पढ़े, किसी चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला, कुछ नहीं था बंदा फिर बन गया, किसी मादे के बग़ैर कुछ बनाने वाला, इसी तरह किसी मकरूह हमल से निजात देने वाला। और लफ्ज़ जो है ना बारी, इसी से मिलता हुआ लफ्ज़ आगे हम पढ़ेंगे बरिया हाँ, खैरुल बरिया, सूरत बैजीना में क्या आता है, शर्रुल बरिया, खैरुल बरिया, तो बरिया कहते हैं वो मखलूक जो मिट्टी से बनी हुई हो, तो बारी बनाने वाला, बरिया बनी हुई चीज़। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं लफ्ज़, इन द बारीकुम फताब अलैकुम इन्नहु तव्वाबुर रहीम, ये तो गुज़र चुके आगे, जी असाइका, पीछे गुज़रा, मिनस सवाइकी औ कसैयिब मिनस सवाइक, तो सवाइक जमा थी साइका की, स्वाद ऐन काफ इसका रूट होता है, साइका बेहोश होने वाले को कहते हैं, तो साइका वो बिजली जो गिरकर भस्म कर दे, जला के राख कर दे, असल में इसमें लफ्ज़ फिर भी बेहोशी का आ रहा है। फिर देखिए मिम्बादी मौतिकुम व जल्लना, ये लफ्ज़ जल्लना को देख लीजिए, जोए लाम लाम इसका रूट है, उर्दू में कभी ये लफ्ज़ पढ़ा बताइए, सोचिए, जिल्ले हुमा का नाम सुना किसी ने, जिल कहते हैं साय को, जोए से, असल मसला क्या कि हमारे जिल जल जल सारे एक ही हैं, नाम में जी जोए का फ़र्क पता चलता है ना दुआत का, लेकिन जोए से जब लाम होता है तो जिल जुल कहते हैं, जिल्ले सुबहानी का लफ्ज़ सुना होगा, ये भी शिरकिया लफ्ज़ है बहरहाल, लेकिन यह है कि जल्लना क्या है कि साया करना, किसी चीज़ के साए में आ जाना। और इसमें एक लफ्ज़ जो जिल्ले हुमा मैंने बोला, तो ये एक परिंदा है हुमा, जिसके बारे में ये कहते हैं कि जिसके सर से वो गुज़र जाए ऊपर से वो बंदा बादशाह बन जाता है, ये अब हमारी कहावतें, तो वही लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में हमारे सामने आ गए। अलगमाम को देखिए, कभी इससे मिलता हुआ कोई लफ्ज़ सुना, गम, बिल्कुल ये वही है, गैन मीम मीम, गमाम कहते हैं क्लाउड्स को, वो छाए हुए बादल, गम जो है ना ये दिल को छा लेता है, दिल के ऊपर यूं आता है, आपका दिल यूं बोझल हो जाता है, आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, आप सोचते हैं कि ये सब कुछ हमें, एक पता नहीं मेरे दिल को क्या है, पता नहीं आज दिल क्यों है, तो गमाम क्लाउड्स हैं, बादल जो इंसान के दिल पर आ जाते हैं या आसमान पे आ जाते हैं। और अनजलना इलैकुमुल मन्न वस्सलवा, ये लफ्ज़ मन क्या है, किसी को कोई गैस है, कभी उर्दू में ये लफ्ज़ बोला हाँ, अच्छा वो आप दूसरे मन की बात कर रहे हैं, ये शद वाला मन है, वो मीम नून होता है, वो तो मन है ना, कौन, वो ये नून पे जज़्म है, मन, जी कोई गैस करे, वो मन दूसरा है, वो नून पे जिसम आती है जो इन्होंने भी बोल दिया, मनो अन कह दिया, ठीक है ये बिल्कुल वही लफ्ज़ है। और ये कितने मन का है, मन कितने को कहते हैं, 40 किलो को कहते हैं ना। तो लफ्ज़ मन जो होता है ना, इसका लफ्ज़ी माना होता है बोझ, वज़न। ये जो 40 किलो का मन है ना, वो बोझ की वजह से मन है। इसी तरह हम आगे सूरत आले इमरान में पढ़ेंगे, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, बेशक अल्लाह ने एहसान किया मोमिनों पर। तो मन एहसान के लिए भी आता है, ठीक है। और यहाँ ये मन क्या है, ये हम तफसीर में देखेंगे। तो बाज़ कहते हैं कि यहाँ मन के मानों में, यानी जब वो उतरती तो कहते थे मन व्हाट इज़ दिस, यानी व्हाट के मानों में। सलवा कहते हैं परिंदे को, हाँ, जो समझ लीजिए कि बर्ड्स का मीट होता है। अल्लाह ताला ने दो नेमतों का यहाँ तذکرہ किया, जिसकी डिटेल इंशाल्लाह हम तफसीर में देखेंगे। फिर उसके बाद देख लेते हैं कोई और लफ्ज़ आगे अगर हमें दिखता है तो उस पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाएगी। जी अब देखिए कि इसमें बार बार लफ्ज़ आ रहा है बख्शिश का, नग़फिर लहुम। आप अगर सिर्फ इस एक लफ्ज़ के रूट से जमा करें तो कई लफ्ज़ आपको इन सबको में मिलेंगे जो अभी तक हम पढ़ चुके। तो मग़फ़रत के लफ्ज़ को समझ लेते हैं आज। गैन फ़ारा, गफ़रा कहते हैं छुपाने को। अलग़फ़रू कहते हैं किसी को इस तरह छुपा लेना या किसी को ऐसी चीज़ देना या लेना जो उसे मैल कुचैल से बचा ले। ये जो सर के ऊपर टोपी पहनते हैं ना जंगों में अपने आप को तलवारों से बचाने के लिए, उसको मग़फ़र कहते हैं। कभी आप सीरत पढ़ते हुए ये सुन सकते हैं कि नबी सल्लम ने मग़फ़र पहन ली, हाँ, हौद की कड़ियाँ लग गई, तो लोहे के हौद को कहते हैं। इसी तरह अलग़िफ़ार कहते हैं अंडर कैप को, जो ये आप पहनते हैं ना, जिसको बोलते हैं कैप होती है ना, स्काफ़ के अंदर पहनने वाली, क्योंकि वो आपके स्काफ को तेल वगैरह से बचा लेती है, तो उसको अलग़िफ़ार कहते हैं। किसी अरब कंट्री में जाएं तो ये कैप और टोपी और रुमाल ना मांगें, वो आपको पता नहीं क्या दे देंगे। उसको अलग़िफ़ार कहेंगे तो वो आपको ये अंडर कैप दे देगा। इसी तरह अलग़िफ़ारा कहते हैं वो बादल जो दूसरे पर छाया हो। फिर इसके बाद आगे हम देख लेते हैं लफ्ज़ ख़ता, या क्या है, ख़तीयतुन की जमा, और इसके इसका भी मानी मिस्टेक होता है इंग्लिश में, जो हमारे लिए लफ्ज़ आता है। फ़बद्दला के लफ्ज़ को देख लीजिए, बादला में। फिर उसके बाद आखिर में एक लफ्ज़ देख लेते हैं रिज़्ज़म। रिज़्ज़ लफ्ज़ को देख लीजिए, इस तराब को कहते हैं, जलजले की तरह का अजाब। अरब लोग बोला करते हैं रिज़्ज़ुल बईर, कमज़ोरी की वजह से ऊँट की टांगों का कांपना, यानी इतना नहीव सा ऊँट था कि टांगें उसकी कांप रही थी। तो रिज़्ज़न के लफ्ज़ के अंदर अजाब भी होता है और ज़िल्लत भी होती है, दोनों चीज़ों से एक लफ्ज़ के अंदर जमा हो जाती हैं। बिमा कान यफ़सुकून फिस को तो हम पीछे बहुत देख चुके। और इसी तरह आप देखिए कि ये जो रिज़्ज़ का लफ्ज़ हमने पढ़ा, तो शेर की बहर को भी रिज़्ज़ कहते हैं। कभी आपने एक लफ्ज़ सुना रिज़्ज़िया शार, फ़लाँ ने बड़े दुखी शेर रिज़्ज़िया शार कहे, तो वो भी यही लफ्ज़ है। तो बहरहाल या तो इससे आपको आसान हो जाता होगा या और मुश्किल हो जाता होगा। तो ये थी थोड़ी सी वजाहत, इंशाल्लाह हम तो तिलावत सुनेंगे इन आयात की।
या बनी इसराइल اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون